कहीं मामी बच पर यदि संभव ना हो तो कृष्ण जी क्यों कहेंगे हम लोग को? इफ इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कृष्णा विल नेवर एडवाइस अस टू डू दैट. इट इज पॉसिबल. हाउ इट इज पॉसिबल? नाउ आई एम प्रेजेंट देयर इन द शेप ऑफ आचार्य. You don't understand it. You can't understand and follow. Conceive it. Acharya man bhi janiya. Nava manneta parichi. Na marta buddha asigeta. Sarvadeva mayo hi daya mayo guru. I myself is present there in the shape of Acharya guru. Tasmat gurum pabandita jikasu seya uttamam. साधे पड़े चलिस नाथ ब्रह्मण समस्या. सो यू शुड सरेंडर सरेंडर टू दैट आचार्य और गुरुपाद पद्म. इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ माया योर फर्स्ट थिंग इज नेसेसरी विच इज नेसेसरी इज टू गेट रीड ऑफ माया. सो लॉन्ग यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ माया द प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल फॉर यू. The eternal progress, endless progress in the eternal life, it is not possible. First of all, adau shuddha kato sadhu sangha kato bhajana kriya ato anartha nibbittisya. You should get rid of that maya. First of all, tato bhava atha shakti tato lobha etc. may be possible. Lobha is not attainable at first time, but it is after. After getting rid of maya, it is possible. Ado shuddha tato sadhu sangha ato bhajana kriya tato anartha nibbittisya tato nishtha ruchistato atha shakti. Asakti is called lobha, greed, lust. This is so high thing. This cannot be attainable at the first. Kinds of manifestation of his qualification, let their descendants, disciples, tell it. I want to retire here. Thank you. Mansa Bhagavata.
Now it is too late, but yet we want to hear from Shripad Urukram Prabhu. He is initiated by Swami Bhaktivedanta Maharaj.
Amakrishna.
Krishna is here.
Jirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurun Militang Jena Asmai Sri Gurave Nama पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ननाम्ने गौरत्रिषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो.
आज परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् श्रीमद् भक्ति रक्षक सिद्धर महाराज जी का आविर्भाव दिवस है. pray. जब जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जब आविर्भूत हुए और विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार आरंभ किया, उस समय में बहुत से नवयुवकों ने आकर उनका अनुगत्य आरंभ किया और उनके इस विश्व प्रचार में बहुत बड़ा योगदान किया। उन लोगों में से जो प्रमुख थे उनमें श्रीधर पूज्यपाल श्रीधर महाराज एक अन्यतम हैं। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु आए उनके गण आए, जिस प्रकार से रूप गोस्वामी आए उनके सारे परिकर लोग आए, और बहुत थोड़े दिनों में ही विश्व में प्रचार किया, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने इन शिक्षित सभ्रांत नवजुवकों को ब्रह्मचारी वेश और संन्यास प्रदान कर बहुत थोड़े दिनों के अंदर में सारे विश्व में उन्होंने गौरवाणी का और नाम संकीर्तन का प्रचार किया। मैं 1947 से ही पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी को से परिचित था। मैं 46 में मठ में ज्वाइन किया और हमारे गुरुजी 1941 में परम पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से काटवे में संन्यास ग्रहण किया। उसके बाद में प्रभुपाद जी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के बहुत से शिष्यों ने उनसे संन्यास ग्रहण किया। गुरु महाराज जी नवदीप धाम परिक्रमा के बाद में जरूर एक बार उनसे मिलने के लिए अवश्य जाते थे। जब जाते तो हम लोग कुछ लोग जरूर उनके साथ में रहते थे। कभी कभी पूज्यपाद बावन महाराज जी, पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी, मैं और दो एक और उनके साथ में हम लोग जाते और वहां पर वैष्णव सभा होती, उसमें गुरु महाराज जी उनको प्रतिवर्ष श्रद्धा निवेदन करके आते थे। जरा बोलो तो शिला गौड़िया मठ None of when he joined. 28. हाँ नहीं कुछ जानवर कुछ पास श्रीधर महाराज स्वयं हमसे गुरु जी के संबंध में और अपने संबंध में कुछ बतलाया था। मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा उपस्थित कर रहा। पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी एक शिक्षित सभ्रांत ब्राह्मण परिवार में वे आविर्भूत हुए थे। बचपन से ही उनमें धार्मिक विचार देखे जा सकते थे। कलकत्ते में लॉ पढ़ते समय उन्होंने प्रभुपाद जी का नाम सुना, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का, और वहां पर उनसे मिले, उनके विचारों से बड़े प्रभावित हुए। कुछ दिनों के बाद में एक बार वो मायापुर में आए। अभी दीक्षा और हरिनाम उन्होंने नहीं लिया था, लॉ कॉलेज में अपने थर्ड ईयर में थे उस समय। उस समय में मायापुर में जब आए तो जहां गुरुजी कटहल तला, कटहल के वृक्ष के नीचे टेबल पर अपना पैर लगाकर आराम से चेयर पर बैठे हुए बड़े ठाट बाट से जमींदारी का संचालन करते, वहां पर वो उपस्थित हुए जहां पर चैतन्य गौड़ीय मठ वर्तमान में है। उन्होंने देखा कि एक बहुत तेजस्वी लड़का सफेद कपड़े में ब्रह्मचारी कुर्सी पर बैठा हुआ है और पैर टेबल पर रख करके ऐसे ऐसे हिला रहा है और आंख बंद कर कुछ चिंतन कर रहा है और हाथ में उनको एक बेंत है और पासी में कुछ लोग बैठे हैं। उन्होंने देखा कि उधर से जो कोई भी ब्रह्मचारी आते हैं, सन्यासी आते हैं, उनको बड़े आदर से प्रणाम करके जाते हैं। इतने में उन्होंने देखा एक लंबे चौड़े बहुत अच्छे व्यक्तित्व के एक सन्यासी आए और उनको प्रणाम किया और उनके निकट जाकर के बड़ी श्रद्धा से कुछ पूछा। उन्होंने उसी प्रकार से चेयर पर बैठे हुए और उनको कुछ कहा, निर्देश दिए और वो निर्देश लेकर के चले गए प्रणाम करके। पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी हम लोगों से कहते थे कि मैं देखा ये एक ब्रह्मचारी इतना तेजस्वी व्यक्तित्व का यह कौन हो सकता है। उन्होंने देखा, पूछा लोगों से जी ये ब्रह्मचारी कौन है सफेद कपड़े में, जिसको बड़े बड़े सन्यासी लोग, उम्र वाले लोग भी प्रणाम करते हैं और बड़ा आदर करते हैं। तो सिद्धर महाराज जी कह रहे थे कि हमको बड़ा कौतूहल हुआ और कौतूहल होने से मैंने पूछा लोगों से, तो लोगों ने कहा आप इन्हें नहीं जानते, ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी हैं, प्रभुपाद जी के एकांतिक प्रिय शिष्य हैं और ये मायापुर की जमींदारी सब देखते हैं और इनके वजह से ही मायापुर की जमींदारी की रक्षा हुई। इन्होंने ही यहां से मुसलमानों का कब्रगाह उड़ा करके और यहां पर बगीचा इत्यादि बनाया, मुसलमानों का आधिपत्य यहां से हटाया और चारों तरफ में जो मायापुर में दबदबी बनी हुई है वैष्णवों की प्रधानता, ये इनके वजह से है। ये बड़े तत्वविद हैं, वो अपने मुख से इस प्रकार से कहे। इसके बाद में प्रभुपाद के पास में गए, प्रभुपाद जी का विचारों को सुन करके बड़े प्रभावित हुए और कुछ दिनों में उन्होंने हरि नाम ली, किंतु घर में आते जाते रहे। इसके बाद में हमारे गुरुक्रम प्रभु जी ने बतलाया जे कैसे घर बार को छोड़ करके विवाहित थे, विवाह के बाद में उनकी स्त्री भी मर गई, अपने भाइयों को छोड़ करके संपूर्ण रूप में मठ में ज्वाइन कर लिया। पीछे से हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने उनको श्री भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी, श्रीधर महाराज देव गोस्वामी नहीं, तो इस प्रकार से उनको नाम दिया। ये उनके समय में मद्रास में, कुरुक्षेत्र में और जगहों में जहां विद्वत सभा होती प्रचार करने के लिए, वाराणसी में प्रयाग में ये सब उनको भेजते थे और बड़े बड़े विद्वान लोग उनके साथ में जाते और चारों तरफ में प्रचार करते। जब प्रभुपाद जी का ने अप्रकट लीला में प्रवेश किया तो वहां बड़ी गड़बड़ी मची और उस समय में प्रभुपाद जी के जितने भी एकांतिक प्रिय शिष्य थे वे सभी लोग वहां से चले आए, जिसमें हमारे गुरुदेव परम पूज्यपाद नरहरिश ठाकुर दा, निसिंह महाराज, जगन्नाथ बल्लभ बाबा जी, भक्ति कमल मधुसूदन महाराज, उस समय नौतमानंद प्रभु जी, परमहंस महाराज जिसका पहले नाम महानंद ब्रह्म श्री श्रीपाद महानंद ब्रह्मचारी इत्यादि, वे कृष्णदास बाबा जी महाराज इत्यादि 40-50 आदमी मायापुर को छोड़ करके नवद्वीप में आए। और गुरुजी ने इसी बीच में कलकत्ते में गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की और उसके पहले ही ये लोग नवद्वीप में आकर के पूज्यपाद सिद्धर महाराज भी इन लोगों के साथ में थे, 20-25 आदमी थे। यहाँ पर गौड़ीय मठ की स्थापना हुई, श्री चैतन्य महाप्रभु की वो जो बाल विग्रह जो हमारे अभी देवानंद गौड़ीय मठ में थी वहीं पर उनकी स्थापना की गई और एक किराए के घर में ये वेदांत समिति की शाखा मठ देवानंद गौड़ीय मठ की स्थापना हुई। इसके बाद में गुरुजी ने कहा क्या थोड़ा सा बोल दो महाराजी, हमारे गुरुजी के गौड़ीय वेदांत समिति में ही बहुत दिनों तक ही बहुत दिन गौड़ीय वेदांत समिति फॉर सो लॉन्ग टाइम आफ्टर श्रील प्रभुपाद इंटर्ड इन अपराकृत लीला बहुत दिनों तक रहे। इसके बाद में उन्होंने गुरुजी से कहा, देखिए आप बहुत प्रभावशाली आचार्य हैं और आप विश्व में सब प्रचार कर सकते हैं और अभी सारे बंगाल में आप बहुत तेजी के साथ में प्रभाव रूप में आप प्रचार कर रहे हैं, मैं प्रचार कर नहीं सकता, हमारे अंदर में वो नहीं है जो मैं प्रचार करूं, मैं चाहता हूं कि नवद्वीप के किसी कोने में बैठ करके मैं कुछ भजन करूं, इसलिए आप हमको थोड़ा सा स्थान दे दीजिए तो मैं वहीं पर छोटी सी कुटिया बना करके और वहां पर भजन करूंगा। तो अभी जहां पर उनका मठ है, मंदिर बना हुआ है, वो गुरुजी के नाम से गौड़ीय वेदांत समिति के नाम पर वहां की वो जमीन है, वो क्या स्थान का सरस्वत कोले डांगा सरस्वत गौड़ीय मठ, ये गौड़ीय वेदांत समिति के नाम पर गुरुजी के नाम पर वो जमीन थी। उनके कहने से साथ ही साथ गुरुजी ने लिख पढ़ करके रजिस्ट्री करके वो उनको दे दिया और वहां पर उन्होंने आश्रम बनाया। इसके बाद में फिर धीरे धीरे उन्होंने आश्रम बना करके वहां से कुछ प्रचार करना आरंभ किया, अधिक प्रचार तो नहीं किया किंतु पीछे से स्वामी जी जब प्रचार किया उनसे संबंध हुआ, बहुत से लोग उनके पास में सुनने के लिए जाते। मुझे दो एक बातें उसमें याद है, जरा बोल दो, मैं उसका दो एक बातों का विवरण मैं पीछे दे रहा हूं। गुरुजी स्वयं कहते थे हमारे कि कभी कभी हम दोनों एक साथ में बैठते और किसी विषय को सिद्धांत को लेकर के चर्चा होती तो वो जो कुछ स्थापन करते मैं उसका खंडन कर देता और फिर मैं जो स्थापन करता उसका वो खंडन कर देते। इसके बाद में वो जो जिस चीज को एस्टेब्लिश करते उसको फिर मैं खंडन कर देता। इस प्रकार से हम लोगों का खंडन मंडल सुनने के लिए हम लोगों के मठ के जितने मायापुर में चैतन्य मठ में या और कहीं भी सब जितने लोग थे वो बहुत से लोग आकर के इकट्ठे होते और हम लोगों का बात विवाद सिद्धांत का विचार सब श्रवण करने के लिए आते थे। पूज्य पाटशीधर महाराज जैसे दूसरे लोग सिद्धांत में सुनने के लिए जाते, खंडन बंधन उनके साथ में करना बड़ा भारी मुश्किल था। केवल हमारे गुरु जी थे जो कि उनके विचारों को भी खंडन करते और फिर वो उनके विचार को वो इस तरह से बहुत सुंदर तर्क वितर्क चलता था। एक समय हम लोग चैतन्य सरस्वत गौड़ीय मठ में गुरु जी के साथ में गए थे, तर्क का विषय था, विचार हो रहा था कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उपदेशामृत का जो श्लोक है क्या है वो कृष्ण एक जस्य गिरी तंग मनसा द्रियेत दीक्षा चेत प्रणतभिश्च भजन तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अन्य मन निंदाद शून्य हृदय में क्षति संगल। इसका श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक्सप्लेनेशन दिया है। पहला, कोई भी व्यक्ति हो यदि कृष्ण नाम एक बार भी करता है तो उसको अपना स्वजातीय समझकर उसको लिखा है अपने भाष्य में अपनी टीका में, जो लोग चेत दीक्षास्ति चेत दीक्षा हो गई हो, संबंध ज्ञान हो गया हो और न तो कुछ दूर हो गया हो, थोड़ा सा भगवत भक्ति में कुछ उसको रुचि हो गई है, कुछ तत्व ज्ञान भी हो गया है, ऐसा व्यक्ति यदि कृष्ण नाम करता है एक बार भी उसको स्वजातीय समझ करके प्रणाम करो। जो लोग नियमित रूप से भगवान का भजन करते हैं तत्व ज्ञान के सहित संबंध ज्ञान के सहित, उनको मन और शरीर वाणी इत्यादि के द्वारा उनको प्रणाम करो। और जो लोग निंदा इत्यादि शून्य होकर के अष्टकाली लीला का स्मरण करते हुए अनर्थ रहित होकर के संपूर्ण रूप से राधा कृष्ण का भजन करते हैं, उनको अपना प्राणों का सर्वस्व समझकर उनके चरणों में सर्वस्व निवेदन करके भजन करो। तो यहां पर प्रश्न उठाता कि इन दोनों में जो एक कहते हैं कि कृष्ण नाम करने से भी उसे स्वजातीय समझ करके उसको मन ही मन आदर करो, प्रणाम करो, और एक कहते हैं कि दीक्षा के बाद में संबंध ज्ञान उदित होने पर तब उसको प्रणाम करो, मन ही मन आदर करो, तो इसमें कौन सा उपयुक्त है, वैशिष्ट किसका है? भक्ति विनोद ठाकुर कभी गलत नहीं कर सकते और प्रभुपाद जी अवश्य नहीं कर सकते, दोनों एक माने हुए आचार्य हैं, सिद्धांत को जानने वाले हैं, इसलिए इस विषय में हम लोगों को कौन सी व्याख्या ग्रहण करनी चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा भक्ति विनोद ठाकुर जो कह रहे हैं रूप गोस्वामी का यही विचार है, जीव गोस्वामी का यही विचार है और आचार्यों का भी यही विचार है और श्रील प्रभुपाद जी कुछ विशेष कर रहे हैं, दीक्षा होने के बाद में तमन मन में आदर करो स्वजातीय जानकर। इसलिए ऐसा लगता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो कहा है वही ठीक है। एक बार यदि कृष्ण नाम कोई करता है, भले ही हमारे संप्रदाय में न हो, हरिनाम दीक्षा नहीं भी लिया हो, किंतु भजन करना चाहता है, अनर्थ भी है, तभी वो कृष्ण नाम करता है तो उसको मन ही मन में आदर करो। पूज्य पाटशीधर महाराज जी ने भी इसी सुर में सुर मिलाया, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा, किंतु गुरु महाराज जी उठ करके बड़े ओजस्वी भाषा में कहा, आप लोग जो कहते हैं बहुत ठीक है, मैं इसका प्रतिवाद नहीं करता, किंतु हमारा थोड़ा सा निवेदन है, आप लोग श्रवण करें, विशेष करके पूज्यपाद श्री धर्म महाराज जी से कहा, क्योंकि उनके सन्यास गुरु भी थे। किंतु गुरु महाराज जी हमारे पूज्यपाद श्री धर्म महाराज जी से बहुत सीनियर, एक दो वर्षों का नहीं, 1916 में आए थे और प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत सब सेवा करते थे, उनके पास में रहते थे, उनके घर में सोते थे, उनके उनकी आंगिक सेवा से लेकर के वाणी बपू सभी प्रकार की सेवा करते थे, हाँ?